सन 1850, ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजी सत्ता ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। रियासतों के शासक अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। उसी तरह एक रियासत थी बिलासपुर की रियासत। बिलासपुर की रियासत के शासक महाराज विक्रम प्रताप सिंह थे। आज महल में उत्सव का माहौल था, चारों तरफ बस खुशियां छाई हुई थी। महल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। रानी मैनावती को तो जैसे आज पंख लग गए थे, वो इधर उधर भाग दौड़ में लगी हुई थी। मैनावती ने जोर से आवाज लगाकर कहा, अरे चंपा तुम इधर आओ, जमुना किसी भी चीज की कोई कमी नहीं देनी चाहिए, पता है ना आज का दिन कितना शुभ है। जमुना दौड़कर उनके पास आई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ रानी सा, जैसा आपने बताया वैसा सब इंतजाम हो गया है, आप सुबह से दौड़ धूप में लगी हैं, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। मैनावती, अब तो हम तभी विश्राम करेंगे जब हमारे राजकुमार रिवांश हमारे सामने आएंगे। उनके पिताजी ने उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था, अब तक तो उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी। पूरे 10 साल बाद हम अपने रिवांश को देखेंगे, जब वो गए थे तब 15 साल के थे, कितने बड़े हो गए होंगे ना हमारे बेटे। अरे अब तो उनकी शादी की भी उम्र हो गई होगी, अब तो एक पल का भी इंतजार नहीं होता, बस अब तो वो आंखों के सामने आएंगे तभी उन्हें सुकून मिलेगा। दूसरी दासी चंपा भी उस तरफ दौड़कर आई। उसने रानी मैनावती को फूल दिखाते हुए पूछा, ये ठीक है ना रानी सा, और क्यों चिंता करती हैं, बस आज रात की बात है, ये रात गुजर जाए फिर सुबह तो राजकुमार आपकी आंखों के सामने होंगे। मैनावती ने जवाब दिया, ये रात ही तो नहीं गुजरती, उनके इंतजार में हमने कितनी ही रातें बिता दी, लेकिन ये एक रात का इंतजार हमारे पिछले 10 सालों के इंतजार पर भारी पड़ रहा है। मैनावती वहां से शाही रसोई घर की तरफ मुड़ी जहां पर रिवांश के पसंदीदा पकवान बनाए जा रहे थे। उधर दूसरी तरफ राजकुमार रिवांश अपने शाही घोड़े पर बिलासपुर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ उनकी रियासत के 4 लड़के थे। वैसे तो वो चारों वहीं के दास दासियों के पुत्र थे, लेकिन रिवांश ने उन्हें हमेशा अपना दोस्त समझा। राजकुमार रिवांश इस बात से पूर्णतया अनजान थे कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझ रहे हैं वही आज उन्हें उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप देने वाले थे। बिलासपुर के पास का जंगल, रात के 10 बजे। रिवांश ने जंगल में प्रवेश करने से पहले अपने घोड़े को रोककर पूछा, आप लोग हमें इस घने जंगल में क्यों लेकर जा रहे हैं, रास्ता तो उधर से भी जाता है ना। विजय ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अरे युवराज आप डर क्यों रहे हैं, ये रास्ता छोटा पड़ता है, रानी सा आपके इंतजार में बावली हुई जा रही है, तो हमने सोचा कि हम इस रास्ते से चले। रिवांश उनकी बात मानकर उनके साथ जंगल वाले रास्ते से आगे बढ़े। वो भी अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत आतुर हो रहे थे। जंगल में कुछ दूर पहुंचकर उन चारों ने सबको रुकने का इशारा किया और रात को वहीं डेरा जमाने का आदेश दिया। रात काफी हो चुकी थी और सब लोग बहुत थक भी चुके थे, तो वहीं कारवां जमाने में लग गए। संजय ने रिवांश के पास जाकर कहा, जब तक ये लोग यहाँ डेरा लगाते हैं हम थोड़ा आगे जाकर टहलाते हैं, क्यों राजकुमार चलेंगे ना। नहीं, हम काफी थक गए हैं और नींद भी काफी आ रही है, रिवांश ने उन्हें मना कर दिया। उसके मना करने पर उन चारों का चेहरा उतर गया। रवि ने मुंह लटकाकर कहा, लगता है विदेश में पढ़कर आप अपने बचपन के साथियों को भूल गए, हमारी औकात नहीं थी कि हम भी परदेश में जाकर पढ़ें, हम आपके ओहदे से काफी छोटे हैं, तभी आप हमारे साथ नहीं घूमना चाहते ना। रिवांश ने चकित होकर कहा, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, हमने कभी अमीर गरीब में भेद नहीं किया, भले ही हम विदेश में पढ़कर आए हैं लेकिन हमारे संस्कार आज भी भारतीय ही हैं, चलिए चलते हैं। रघु ने अपने साथ एक थैला लिया। रिवांश ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो उसने बहाना बनाकर कहा, इसमें हमारे खाने पीने का सामान है बस। रिवांश मुस्कुराते हुए उन चारों के साथ आगे बढ़े। काफी दूर चलने के बाद वो जंगल में काफी आगे निकल गए। लगता है आप काफी थक गए हैं राजकुमार, चलिए विश्राम करते हैं, उनमें से चौथा लड़का रवि बोला। वो पांचों वहीं बैठ गए। ठंड होने के कारण रवि ने वहां बीचों बीच थोड़ी आग जला ली। फिर उसने अपने थैले में से कुछ तंत्र विद्या का सामान निकाला। उस तंत्र विद्या के सामान को देखकर विजय, संजय, रघु और रवि के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रिवांश कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि उन लोगों के पास में ये सब क्या और क्यों था। रिवांश ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछा, ये आप सब लोगों ने क्या ले रखा है, हम लोग तो विश्राम करने के लिए रुके हैं ना। संजय उन चारों में सबसे चालाक था, उसने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं युवराज, एक छोटी सी पूजा है आपकी सलामती और खुशहाली के लिए, इसी बहाने रात भी कट जाएगी, और देखिए ना आग जलाते हुए, आग होगी तो जंगली जानवर भी हमारे पास नहीं आएंगे और ठंड भी नहीं लगेगी। रिवांश स्वभाव से बहुत मासूम और दिस्का सच्चा था, वो उन सबके मन में चल रही कुटिलता से अनजान था। उसे नहीं पता था कि वो लोग दोस्ती के चोगे में छिपे हुए भेड़िए थे जो उस पर पीठ पीछे वार करने की तैयारी के साथ ही आए थे। वो उन कुटिलों की मीठी मीठी बातों में आ गया और अनजाने में उस पूजा में शामिल हो गया। ये पूजा कोई आम पूजा नहीं थी, ये एक बहुत ही सिद्ध काले जादू की पूजा थी। वे चारों काफी समय से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे राजकुमार के साथ वो तंत्र विद्या कर सके। वे उस साधना के जरिए स्वयं शैतान को जागृत करना चाहते थे। रिवांश का जन्म पूर्णिमा के दिन अश्विनी नक्षत्र में हुआ था। अश्विनी नक्षत्र सभी नक्षत्रों में सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। उन चारों को अच्छी तरह से मालूम था कि राजकुमार के ग्रह नक्षत्र बहुत शक्तिशाली हैं। इस सिद्ध पूजा को अभिमंत्रित करने के लिए कोई शक्तिशाली ग्रह नक्षत्र का स्वामी होना जरूरी था, इसलिए उन्होंने बेईमानी से उन्हें पूजा में बिठा दिया। वे चारों इस पूजा में कई मासूमों की बलि से इकट्ठा दिया हुआ रक्त का प्रयोग करते हैं। वे लोग काफी समय तक उस पूजा को करते रहे। रात्रि के तीसरे पहर बीतने के साथ ही जंगल के अंदर मनहूसियत छा गई। शैतान बुराई का जड़ था, उसकी परछाई जंगल पर पड़ी और उसी क्षण वो जंगल एक शापित जगह में परिवर्तित हो गया। वो अंधेरी रात उस बुराई से और ज्यादा अंधेरी हो गई। चारों तरफ भेड़ियों और चमगादड़ों के रोने की आवाज आ रही थी। जानवर इधर उधर भागने लगे। हर तरफ से बुरी शक्तियां आने लगी, मानो वो शैतान जो कि उनका बादशाह था उनके आने की खुशियां मना रहे हों। डायन और चुड़ैलें अपनी कर्कश ध्वनि से गुनगुना रही थी। उनका स्वर इतना भयानक था कि उन पांचों के कानों से खून बहने लगा। वो शैतान की परछाई बहुत भयानक थी। भले ही कुछ साफ नजर न आ रहा हो, लेकिन वहां खौफ पैदा करने के लिए उसका काला साया ही काफी था। वो बहुत विशाल और भयावह था। उसकी परछाई ने पूरे जंगल को आकाश की भांति अपने आगोश में ले लिया था। वो पांचों घबरा गए। तभी किसी की बहुत ही भयानक आवाज गूंजी, किसने किया है हमारा आह्वान? जानते नहीं, जब एक शैतान आता है तो कईयों की मौत साथ लाता है। रघु, विजय, संजय और रवि नीचे सिर झुकाकर बैठ गए। वो मंजर इतना भयानक था कि उन चारों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। रिवांश तो अपनी जगह पर जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा था। रघु ने हिम्मत बटोरकर हकलाते हुए कहा, मालिक, हम चार दासों ने आपका आह्वान किया है। मालिक की जय हो, अंधेरे की जय हो। तभी वो भयावह आवाज फिर गूंजते हुए बोली, बोलो क्या चाहिए? विजय ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमें अंधेरे का गुलाम बना लीजिए, हमें तामसी शक्तियां चाहिए, हमें अपनी सरगोशी में ले लीजिए मालिक। संजय ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कभी बुढ़ापे का साया भी हम लोगों के ऊपर ना पड़े। रवि, बस कुछ भी करके हम हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े वैसे वैसे हमारी शक्तियां भी बढ़ती जाए।
और तुम्हें क्या चाहिए? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे द्वारा ही ये पूजा सम्पन्न हुई है। शैतान का इशारा रिवांश की तरफ था। रिवांश उन सब घटनाक्रम से इतना ज्यादा डर गया कि उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, वो वहीं जड़ हो गया। चलो दिया, जो तुम पांचों चाहते हो वो सब दिया, पर जानते हो ना कि यहाँ हरेक इच्छा की एक कीमत होती है। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। रघु ने जवाब में कहा, हमने कीमत अदा की है ना, पूरे 100 बच्चों की बलि का रक्त अर्पित किया है आपको। वो तो हमारे आने की कीमत थी, अब जो तुमने मांगा है उसकी भी एक कीमत होगी। तुम सबकी आत्माएं अंधेरों के गुलाम होंगी। तुम्हारे पास शरीर तो होगा लेकिन आत्मा नहीं होंगी। तुम हमेशा जीवित तो रहोगे लेकिन तुम सबको एक शापित जीवन जीना पड़ेगा। तुम्हारी शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती तो जाएंगी लेकिन उसके लिए तुम्हें जीवित लोगों के रक्त की आवश्यकता पड़ेगी। संजय डरते हुए बोला, आप क्या बोल रहे हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आवाज भयानक हंसी हंसते हुए बोली, तुम लोग एक पिशाच का जीवन बिताओगे, नर पिशाच जो लोगों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। तुम्हें लंबी उम्र, जवानी और शक्तियां चाहिए ना, एक पिशाच के पास वो सब कुछ होता है। शैतान की बात सुनकर वे सारे डरकर वहां से भागने लगे। वे वहां से जा पाते उससे पहले ही शैतान ने एक झटके में उन सबकी आत्माओं को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। और यहां से शुरुआत होती है उन पांचों के इंसान से नरपिशाच बनने की। उधर बिलासपुर के महल में रानी मैनावती और राजा विक्रम प्रताप सिंह राजकुमार रिवांश का इंतजार करते रह गए। लेकिन आती है तो उनके गायब होने की खबर। बिलासपुर की पूरी रियासत में ये खबर फैल गई कि रिवांश और उनके चार दोस्तों ने खुद को शैतान का गुलाम बना लिया। इसी के साथ शुरू होता है बिलासपुर के जंगलों में मासूम मौतों का भयावह सफर। कुछ समय बाद, सन 2018, शिमला, एक छोटा सा घर। आकांक्षा ठाकुर अपने दादाजी राजवीर ठाकुर के साथ शिमला में शिफ्ट हुई। राजवीर जी एक सरकारी कर्मचारी थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शिमला में रहने का फैसला किया था। उन्होंने अपना घर जंगल के करीब लिया था, जहां पर आबादी ज्यादा नहीं थी। राजवीर जी शहर के शोरगुल से दूर एक शांत जीवन बिताना चाहते थे। वहीं उनकी यहां पर आकर रहने की वजह आकांक्षा भी थी। राजवीर जी का इकलौता बेटा मोहित और उसकी पत्नी नंदिनी का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो चुका था। राजवीर जी का कहने के लिए कोई अपना नहीं रहा था। मोहित और नंदिनी की बेटी आकांक्षा में राजवीर जी की जान बसती थी। वहीं वो आकांक्षा के साथ होने वाली घटनाओं से भी बहुत परेशान थे, इसलिए वो आकांक्षा को लोगों की भीड़ से दूर एक शांत जगह पर लेकर आए थे। आकांक्षा एक 22 साल की लड़की थी, दिखने में आम सी एक मासूम सी लड़की, जिसके लिए उसके दादू ही अब सब कुछ थे। आकांक्षा अपने कॉलेज की स्टडी पूरी कर चुकी थी और उसने शिमला के एक कॉलेज में अपनी मास्टर्स की स्टडी करने के लिए एडमिशन लिया था। राजवीर जी ने जोर से आवाज लगाई, अक्षु बेटा क्या कर रही है? कितनी देर से देख रहा हूँ, 11 बज रहे हैं और अभी तक तू कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई। आकांक्षा ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, दद्दू मैं चली जाऊंगी ना अकेले कॉलेज, आप रोज रोज छोड़ने जाते हो तो वहां पर सब मुझे बच्ची समझते हैं। और मैं आज कॉलेज नहीं जाने वाली हूँ, मैं आज मेरी फ्रेंड जानवी के पास जा रही हूँ। राजवीर जी उसके पास जाकर बोले, तू तो किसी को दोस्त नहीं बनाती, तो अब जानवी कैसे? और ये वही है ना जो हमारे पड़ोस में रहती है। आकांक्षा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, दद्दू उसका घर हमारे घर से पूरे 15 मिनट दूर है, तो हमारी पड़ोसन कैसी हुई? अब मैं जा रही हूँ और आप मेरे साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। राजवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा जा, लेकिन जल्दी आना और अपने फोन का GPS ऑन रखना। आकांक्षा बड़बड़ाते हुए बाहर निकली, हाँ ताकि आप मेरे हर एक सेकंड की लोकेशन का पता लगा सके। आप भी ना दद्दू, आपकी अक्षु अब बड़ी हो चुकी है। आकांक्षा राजवीर जी को बाय बोलकर जानवी से मिलने चली गई। जानवी का घर पास होने के कारण वो पैदल ही वहां जा रही थी। रास्ते में वहां पर भीड़ इकट्ठा देखकर वो उस भीड़ के करीब चली गई। आकांक्षा ने आगे जाकर पूछा, क्या हुआ है यहाँ पर? भीड़ में से एक आदमी ने जवाब दिया, अरे वही जो रोज होता है, आए दिन जंगल के बाहर किनारे पर किसी न किसी की लाश मिलती रहती है। अब तो पुलिस वाले भी इस शापित जंगल के अंदर जाने से डरते हैं। आकांक्षा ने अपना चश्मा ऊपर करते हुए कहा, शापित जंगल? वो मुस्कुराते हुए आगे बोली, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो अंकल? मैं भी तो देखूं शापित जंगल के बाहर मिली लाश को। बोलते हुए आकांक्षा भीड़ के अंदर जाकर देखा, वहां एक 20-22 साल की उम्र के लड़के की लाश पड़ी थी। उसके गर्दन पर दाईं तरफ किसी जानवर के काटने के निशान बने थे। उसे देखकर आकांक्षा ने सोचा, लगता है इसे किसी जानवर ने काटा होगा, तभी देखो बेचारे की मौत हो गई। सोचते सोचते अचानक आकांक्षा का हाथ उस लड़के के हाथ से टकरा गया और ना चाहते हुए भी आकांक्षा की आंखें बंद हो गईं। आंख बंद होते ही आकांक्षा को कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। एक लड़का भयानक जंगल में भाग रहा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और भागते हुए लड़का वो मदद की गुहार लगा रहा था। तभी अचानक से एक इंसान उसके पास आया और उसके कंधे के करीब आकर उसका खून पीने लगा। इसी बीच लड़के की मौत हो गई और इसी के साथ आकांक्षा जोर से चिल्लाते हुए वहां बेहोश होकर गिर गई क्रमशः।